आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में जारी उठापटक की। भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों में आपसी कलह और आरोप प्रत्यारोप धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 24 अगस्त 2018 को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने डायरेक्टर आलोक वर्मा पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। 15 अक्टूबर को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई कि उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। सीबीआई ने 22 अक्टूबर को अपने ही दफ्तर पर छापा मारा और राकेश अस्थाना के सहयोगी डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 23 अक्टूबर को अस्थाना गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई। 23 अक्टूबर को सीवीसी की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजा जाए। 24 अक्टूबर को रात के 12:30 बजे केंद्र सरकार ने दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज देने का आदेश दिया। इसी रात सीबीआई हेडक्वार्टर के 10वें और 11वें मंजिले को सील कर दिया गया, जहां दोनों अफसरों के कमरे थे। चाबी नागेश्वर राव को दे दी गई और रात 2 बजे आदेश जारी हुआ कि नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बना दिया गया है। 24 अक्टूबर की सुबह 13 अफसरों के तबादले कर दिए गए। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां अदालत ने सीवीसी को 2 सप्ताह के भीतर मामला निपटाने का समय दिया। जब सीबीआई में यह हंगामा मचा तो राजनीतिक पटल पर भी भूचाल आ गया। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई।
को अधिकार सुपरविजन करने का है, केसों के बारे में जो केसेस रेफर करते हैं उनके, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं किसको ट्रांसफर करना किसको रखना। और ये डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर देखते हैं और उनके कंट्रोल में रहने के वजह से उनका यह दायित्व बनता था कि पहले से ही इसको देख लेकर कमिटी के सामने लाकर सारी चीजें बता सकते थे।
मगर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि सीवीसी ने इस मामले में सही सिफारिश की और सरकार ने उसी सिफारिश के अनुसार आदेश जारी कर दिया।
तो सीवीसी ने सही रिकमेंडेशन दिया और सरकार ने उस रिकमेंडेशन को मान करके सही कार्रवाई की। यही प्रैक्टिस है, यही लीगल पोजीशन है। अगस्त में आरोप लगा, राइट, उसके बाद से बार बार कागज मांग रहे थे, तो सीवीसी और भी कड़ा कदम उठा सकता था। ये जो जिन पर आरोप था उसके खिलाफ कह सकता था सरकार को कि उनको निलंबित कर दीजिए, साहब ये इन पर आरोप है घुसखोरी का, आइए यही हेड कर रही है, जांच नहीं होने दे रहे, वह भी जायज होता।
कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य हलकों की ओर से जानकारी दी गई कि जब वर्मा को सीबीआई से हटाया गया तब उनकी मेज पर जिन 7 संवेदनशील केसों की फाइलें थीं, उनमें राफेल घोटाला, कोयला घोटाला में प्रधानमंत्री के सचिव भास्कर खुलगे की भूमिका, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया घूसकांड और स्टारलिंग बायोटेक केस, राकेश अस्थाना का नाम भी इस केस में शामिल है। इस तरह के केस वहाँ मौजूद थे। इस सभी घोटालों के तार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जुड़ते हुए बताए जाते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि सरकार ने जो कुछ किया वो सब पारदर्शिता के लिए किया है।
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और इसलिए उसकी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी बनी रहे, ये किसी भी ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनिवार्य है। टू मेंटेन द इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी ऑफ द सीबीआई एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस प्योरली एज एन इंटरिम मेजर दे विल सिट आउट बाय गोइंग ऑन लीव फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम।
कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन किए। सीबीआई मुख्यालय से करीब 300 मीटर दूर एक छोटे ट्रक नुमा वैन के ऊपरी हिस्से पर खड़े राहुल गांधी ने भाषण दिया और सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा उठाया।
सवाल उठता है कि रात के 2 बजे क्यों किया, 9 बजे सुबह, 10 बजे सुबह, 11 बजे सुबह? नहीं, रात के 2 बजे उनके कमरे को सील किया गया और जो इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे वो लिए गए। तो सिर्फ सीबीआई डायरेक्टर को हटा नहीं रहे हैं, एविडेंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर को मालूम है जिस दिन सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो गई उस दिन प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गए। किसको चार्ज दिया है? उस व्यक्ति को चार्ज दिया है जिस पर केसेस हैं। उस व्यक्ति को क्यों चार्ज दिया है? क्योंकि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कंट्रोल कर पाएंगे।
एक मामला ये भी हुआ कि छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर आईबी के लोग तैनात हो गए। इन लोगों को सादे कपड़ों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ ये बहस छिड़ गई कि सरकार आलोक वर्मा की जासूसी करवा रही थी, मगर सत्ताधारी भाजपा की नेता आरती मेहरा का कहना है कि सरकार कोई जासूसी नहीं करवा रही थी।
नहीं, मुझे लगता है कि इसको ऐसे ही तूल दी गई है। वो एक रूटीन, आईबी जो रूटीन में अपनी गश्त लगाता है, आईबी का जो काम है वो रूटीन में था। इसमें किसी भी तरह का इससे ज्यादा रीड करने की न जरूरत है, न इसमें इससे ज्यादा कुछ था। डायरेक्टर के घर के बाहर थे, डायरेक्टर जिस तरीके से पूरे मामला चला हुआ है उसमें उन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा रीड कर लिया, जबकि आईबी के ऑफिसर अपनी रूटीन गश्त पे थे और वो रूटीन में जो उनकी प्राइम ड्यूटी है उसे पूरा करने का कोशिश कर रहे। जो उससे पहले उन्होंने जो रीड किया वो तो प्रोब में सामने आ जाएगा कि क्यों खदेड़ा या क्यों उनको पकड़ा, क्योंकि वो सस्पिशन में आ गए। जिस तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि आदमी ओवर सस्पिशन में आके ओवर रिएक्ट कर देता है, तो वो बाद में क्लैरिटी हो गई कि आईबी के लोग अपनी ड्यूटी करते हुए रूटीन गश्त पे थे।
वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का मानना है कि ये मामला बड़ा दुखद है।
मुझे चिंता ये हुई कि ये पकड़े गए। आईबी का काम सर्विलेंस का काम है, पेट्रोलिंग का नाम लिया आईबी के लोगों की उस एरिया की, हम पेट्रोलिंग करते रहते हैं, हो सकता करते हो, क्योंकि पेट्रोलिंग का वैसे काम जो है वो नॉर्मल पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है पेट्रोलिंग का, और किसी भी वीवीआईपी या हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टी की जो आउटर पेरिफेरी सिक्योरिटी होती है वो लोकल पुलिस के पास होती है और उसके कई टीयर्स होते हैं उस सिक्योरिटी के। तो ये सर्विलेंस कर रहे थे सीबीआई चीफ की बंगले पे, क्योंकि सरकार शायद ये जानना चाहती थी कि कौन लोग उनसे आके मिल रहे हैं। देखिए, ये एक नरेटिव है, इसमें एक टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसके पास एक लोगो भी नहीं था पहले, तो ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सीक्रेटली काम करते हैं और जब किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर पुलिस को उसकी कस्टडी दे कि लॉ की नजर में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, कर रहे होंगे, लेकिन ये पकड़े गए, ये बहुत चिंता की बात है। और पकड़े गए सीबीआई चीफ के घर के बाहर, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सीबीआई चीफ को सेवानिवृत्त के लीव पे भेजा गया रात के 1 बजे 2 बजे, तो मैं समझता हूं कि सरकार का अगर केस सही भी था तो इट हैज बीन ग्रॉसली मिसहैंडल्ड बाय देम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। इस तरह से जो सीबीआई चीफ को आप लीव पे नहीं भेजते, इस तरह से आप सीबीआई चीफ पे नजर नहीं रखते या उसकी सुरक्षा नहीं करते, उसकी अपनी सिक्योरिटी है, उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पकड़ा है। आप मुझे बताइए, उसके सिक्योरिटी ऑफिसर्स क्या संदेह के शिकार नहीं होंगे जब गाड़ी में बैठे हुए लोग वहां पर नजर रखे हुए हैं? अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन रही होगी वहां पर कि कल तक तो सीबीआई चीफ है और आज उस पर नजर रखी जा रही है।
कांग्रेस के नेता संजय झा का कहना है कि सरकार की ओर से आलोक वर्मा पर भारी दबाव डाला जा रहा था।
भारत के प्रजातंत्र पर ही बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं क्योंकि देखिए एक तरीके से जिस तरीके का एक माहौल है ये चिंताजनक है। और मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका जो पिटीशन है उनमें उस उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारी उनसे हटाई गई वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव डाला गया, उन्होंने कहा कि यह दबाव लिख के नहीं डाला जाता है, लेकिन उसका किसी न किसी तरीके से वो संदेश भेजा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये छानबीन या तहकीकात हो रही है तो वो बड़े बड़े जब अफसरों के बारे में आती है तो सरकार काफी घबरा जाती है। तो यहां पर तो मैं समझता हूं कि उनका निशाना बिल्कुल साफ है, परंतु इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और खुद नरेंद्र मोदी, क्योंकि सीबीआई तो उनके नीचे आता है, दखल अंदाजी हो रही है, हस्तक्षेप हो रहा है और एक न एक तरीके से दबाव कर डालने की कोशिश हो रही है ताकि उनके जो मित्र हो या राफेल घोटाला, जो हमारा विश्वास है कि ये राफेल घोटाला को लेके प्रधानमंत्री काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका सच्चाई तो भविष्य में जरूर आएगा।
इस पूरे प्रकरण में हुआ ये कि सीबीआई की साख को गहरा आघात लगा। पूर्व डीजीपी पुलिस विक्रम सिंह ने सीबीआई का इतिहास बताया और ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण से संस्था को नुकसान हुआ है।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत भ्रष्टाचार हटाने के लिए इसका गठन हुआ था और 60 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री कमेटी, संतानम कमेटी, इनके द्वारा इसका गठन और रूपरेखा तैयार की थी। डीपी कोहली इसके सर्वप्रथम आईजी थे और यहां बड़ी लंबी श्रृंखला इलस्ट्रियस आईजीज की रही है, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, समित कुमार दत्ता, डीपी कोहली आदि, जिन्होंने एक नाम रोशन किया है। और डी सेन साहब ये अधिकांश यूपी काडर के ही डीजीज और आईजीज रहे हैं, जिनकी ईमानदारी के बारे में आज भी लोग कसमें उठाते हैं। इंटेग्रिटी, जब आपने चयन किया था तो जब चयन होता है एक एग्रीड लिस्ट होती है आईपीएस ऑफिसर्स की, उस एग्रीड लिस्ट में उनकी उपादेयता, उपयुक्तता, कैरेक्टर रोल की स्क्रूटनी के बाद एक बहुत उच्च समिति इसके बारे में निर्णय करती कि ये सीबीआई के लिए अधिकारी उपयुक्त है कि नहीं है। उपयुक्तता तो छोड़ दीजिए, स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर के पद पे चयन के पहले आपको क्या भली भांति मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था कि इनकी एचआर स्किल्स कैसी हैं, कि आपकी जब वन और टू में ही नहीं पटेगी, आपकी आपस में ही नहीं इतने कटु मतभेद होंगे कि आपने 60 साल पुराने, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यस बट यू हैव डिमोलिश्ड इट इन अ डे। आपकी इस हरकत ने सीबीआई की सत्यनिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता, जो काम थाना अध्यक्ष के साथ नहीं होता था आज डायरेक्टर सीबीआई और उनके स्पेशल डायरेक्टर के साथ हुआ है। ये हम लोगों ने अपने 36 साल करियर में ऐसी हरकत हमने अपने थाना अध्यक्षों के साथ नहीं की। सस्पेंड किया है, जेल भी भेजा है, लेकिन दफ्तर सील कर देना, आधी रात को छुट्टी भेज देना, ऐसी अनिवार्यता थी तो जरा 60 दिन पहले कर दिया होता।
संस्थाओं की मजबूती देश के सिस्टम की मजबूती के लिए जरूरी है और संस्थाओं की स्वाधीनता और निष्पक्षता से पूरी व्यवस्था को मजबूती मिलती है। अतः महत्वपूर्ण संस्थाओं में इस प्रकार का घमासान केवल संस्था ही नहीं पूरी व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है।